पृष्ठ संख्या 281, अध्याय 29, महान कलाकार की यशस्विता। किसी ने अगर यह प्रश्न किया है कि यशस्वी होना यानि क्या, तो उसका सर्वसाधारणतः उत्तर यह हो सकता है कि संकल्पित लक्ष्य को साध्य करना। अगर किसी को पढ़ा करके उपाधि प्राप्त करनी हो और तदनुसार उसने वह प्राप्त की, तो हम कहते हैं कि वह यशस्वी हो गया। संक्षेप में, यशस्वी होने के लिए अपने साध्य को निश्चित करके विविध साधनों के जरिए प्रयत्नशील रहकर संकल्पित उद्दिष्ट को प्राप्त किया जाता है। साध्य निर्धारित होने से प्राप्त यश को हम सहजतया देख या जान सकते हैं। ऐसे कई रिवाजी विद्यार्थी देखने में आते हैं जो कला के क्षेत्र में कुछ कमाने, किसी उच्च स्तर पर जा पहुंचने और सामान्य कलाकार के रूप में नाम कमाने की जिद मन में रखकर बचपन में और युवावस्था में कठोर परिश्रम किया करते हैं। इनमें से कुछ बीच में ही हिम्मत हार कर गायब हो जाते हैं, कुछ डट कर किए गए प्रयत्नों से बहुत कुछ साध्य कर लेते हैं और शेष में से बहुत ही थोड़े महान कलाकार के रूप में मान्यता प्राप्त करते हैं। कई यशस्वी होते हैं और अनेक असफल। भिन्न भिन्न कारणों, घटनाओं, मूडों एवं प्रेरणाओं से मनुष्य का भाग्य बदल जाता है। कभी वह सामान्य से असामान्य की ओर जाता है, तो कभी उल्टी गति प्राप्त करता है। इस यश प्राप्ति के कारण कौन से हैं, इसमें भाग्य का अंश कितना है, यश की चोटी पर कितने लोगों को स्थान उपलब्ध होता है आदि अनेक प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होते हैं। कला गुणों का अभाव हो तो मात्र भाग्य की वजह से कोई व्यक्ति महान कलाकार नहीं बन सकता। महान एवं यशस्वी बनने के लिए निश्चय ही कलाकार में कुछ गुणों की, विशिष्ट आचरण की, वैचारिकता की और अन्य महत्वपूर्ण बातों की आवश्यकता होती है। इन सब अत्यावश्यक बातों पर अगर साकल्य के साथ गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए, तो कला साधकों को इसका लाभ अवश्य होगा। इस बारे में मात्र तात्विक चर्चा की जाए तो यह विषय नीरस होने की संभावना है। इसलिए हम किसी यशस्वी कलाकार के यश का सुराग ले सकें और उसके कला व्यक्तित्व का अध्ययन कर सकें, तो यह चर्चा पर्याप्त अर्थपूर्ण एवं मनोरंजक होगी। ऐसे अनेक कलाकारों को देखते हुए मेरी नज़र जिस कलाकार पर पड़ गई, वह है उस्ताद जाकिर हुसैन। इन्हें चुनने के दो कारण हैं। एक यह कि वे निर्विवाद रूप में एक अत्युच्च यशस्विता का उदाहरण हैं, और दूसरा यह कि चूंकि मैं तबले का विद्यार्थी रहा हूं, उनकी यशस्विता की बारीकियां मैं उचित उदाहरणों द्वारा बता सकूंगा। उस्ताद जाकिर हुसैन को महान कलाकार बनने में कौन से कारण एवं गुण कारणीभूत हुए, उसका हम जायजा लेंगे। पृष्ठ संख्या 282। उस्ताद जाकिर हुसैन उस्ताद अल्लाह रखा के सुपुत्र एवं शिष्य हैं। अच्छा लायक गुरु पाना कई लोगों के लिए भाग्य की बात होती है। अच्छा गुरु प्राप्त होने पर भी कुछ विद्यार्थियों के कई वर्ष उम्मीदवारी के काल के रूप में बर्बाद होते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन को उनके पिता ही गुरु के रूप में प्राप्त हुए और उस्ताद अल्लाह रखा ने अत्यंत जिम्मेदारी के साथ पिता और आदर्श गुरु की हैसियत से जाकिर हुसैन को उसके बचपन से ही अत्यंत उचित शिक्षा प्रदान की और उससे योग्य रियाज करा लिया। गुरु की प्रसन्नता कैसे प्राप्त होगी, उनसे योग्य मार्गदर्शन कैसे मिलेगा, इस फिक्र में उस्ताद जाकिर हुसैन का एक क्षण भी बेकार नहीं गया। उस्ताद अल्लाह रखा ढंगदार वादक लय प्रधान एवं साथ ही साथ कलात्मक हिसाबी गणिती तबला बजाने वाले बहुत बड़े कलाकार थे। फलतः उस्ताद जाकिर हुसैन को हाथ लय एवं लय का गणित आदि की आदर्श शिक्षा घर पर ही प्राप्त हुई। सोलो वादन एवं साथ संगत दोनों वादन प्रकारों में उस्ताद अल्लाह रखा एक श्रेष्ठ एवं लोकप्रिय तबला वादक थे। कला क्षेत्र का मित्र परिवार एवं हितेच्छुओं का उनका राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा वर्तुल ही है। मुंबई में तो वे अत्यंत लोकप्रिय वादक के रूप में गिने जाते थे। 1950 से 1965 के कालखंड में अपने पिताजी के साथ बाल कलाकार जाकिर हुसैन के पर्याप्त कार्यक्रम हिंदुस्तान में जगह जगह संपन्न हुए। ऐसे सुनहरे मौके उन्हें उस्ताद अल्लाह रखा के कारण ही प्राप्त होते गए। इन सब कार्यक्रमों में श्रोतागण जाकिर हुसैन की प्रशंसा किया करते थे। कलाकार के महान बनने में उसे उचित समय पर मौके प्राप्त होना और रसिकों की ओर से प्रशंसा की दाद मिलना एक आवश्यक बात सिद्ध होती है, क्योंकि ऐसी दाद से कलाकार को रियाज करने, नई नई बातें सीखने एवं बजाने में स्फूर्ति प्राप्त होती है। उचित समय पर मौका न मिलने से और प्रशंसा की दाद प्राप्त न होने से बहुत से कलाकार या तो कलियों की अवस्था में ही कुम्हला जाते हैं अथवा कम से कम उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है। पंडित रविशंकर जी की उनके अत्यंत उत्कर्ष के काल में तबले पर संगत करने का मौका मिलना सभी रियाजी तबला वादकों का स्वप्न था। उस्ताद जाकिर हुसैन को अपनी छोटी उम्र में यह मौका उस्ताद अल्लाह रखा के साथ पंडित रविशंकर जी के निकट के संबंधों के कारण सहज ही में प्राप्त हुआ। कलाकार बनने के दौरान शुरू में उस पर मात्र अपने गुरु की छाप होती है। पृष्ठ संख्या 283। ऐसा यह साधक कलाकार अपने कला दैवत की कलाकृति की एक प्रकार से नकल ही किया करता है। नकल करने के इस प्रयत्न में वह साधक कला गुणों में बढ़ता रहता है। अपनी आयु के 14-15 वर्ष तक जाकिर हुसैन उस्ताद अल्लाह रखा की अत्यंत सुंदर नकल किया करते थे। उस समय उस्ताद अल्लाह रखा का तबला इतना सुंदर एवं तैयार बजता था कि उस तबले की नकल करने के प्रयत्न में जाकिर हुसैन की तेजी से प्रगति होती गई। आगे चलकर उन्होंने मात्र पिताजी की नकल करना ही चालू रखा होता तो वे अत्युच्च पद तक पहुँचे ही न होते, किंतु अत्यंत उचित समय पर उस्ताद जाकिर हुसैन ने तबला वादन का अपना एक निजी अलग ही ढंग निर्माण किया। उनमें छिपी हुई प्रतिभा की अभिव्यक्ति वे करने लगे और रसिकों को मोहित करने वाला उनका एक स्वतंत्र बाज निर्माण हुआ। यह बाज निश्चय ही पिता के बाज से नाता दर्शाने वाला है। जब कोई कलाकार स्वतंत्र बाज या वादन शैली अथवा वादन विचार प्रस्तुत करता है तब उसके व्यक्तित्व का प्रभाव उसकी कलाकृति पर अवश्य पड़ता है। उस्ताद जाकिर हुसैन के समृद्ध व्यक्तित्व का प्रभाव भी उनके वादन में हमें प्रतीत होता है। ऐसा ही प्रभाव उस्ताद अमीर खां, पंडित भीमसेन जोशी या पंडित रविशंकर के कला प्रस्तुतिकरण में हमें महसूस होता है। कलाकार का अनुभव विश्व जितना विशाल होता है उतना ही उसका व्यक्तित्व भी बड़ा होता है। प्रत्येक बड़ा कलाकार अपने व्यक्तित्व की स्वतंत्र छाप अपनी कला पर अंकित करने का प्रयत्न किया करता है। यह छाप जितनी बड़ी हो उतना ही वह कलाकार श्रेष्ठ होता है और उतनी ही उसकी कला प्रस्तुति व्यक्तिनिष्ठ होती है। शिष्य जब मात्र गुरु की शैली का अनुकरण करता है, गुरु के ज्ञान भंडार का स्तरीय ढंग से गुरु की शैली में प्रस्तुतिकरण करता है, तब वह निस्संदेह अच्छा कलाकार बन ही जाता है। परंतु इस सफलता में उसकी तपस्या का बड़ा हिस्सा होता है। किंतु हम कह सकते हैं कि जब शिष्य अपनी अलग वैचारिक स्वतंत्र शैली निर्माण करता है, तब वह स्वप्रकाशित बड़ा कलाकार होता है। तपस्या के बिना केवल प्रतिभा के बल पर कलाकार बड़ा हो ही नहीं सकता। तपस्या को कम महत्व देना मूर्खता होगी। कला क्षेत्र में रियाज के लिए कोई पर्याय नहीं है, क्योंकि संगीत कला एक क्रियात्मक कला है। कला प्रदर्शन में कुशलता का हिस्सा बड़ा होता है। कुशलता सिर्फ रियाज से ही प्राप्त होती है। कहते हैं कला प्रदर्शन के मूल में 90% रियाज और 10% प्रतिभा, ऐसा रसायन होता है। कलाकृति में सौंदर्य दिखाई देना, सूझना, उसका प्रयोग करना, उसका अनुभव लेना या देना आदि प्रक्रियाएं प्रतिभा के कारण ही संभव होती हैं। कौशल एवं प्रतिभा दोनों गुण आदर्श रूप में उस्ताद जाकिर हुसैन के वादन में पाए जाते हैं, इसीलिए उन्हें बहुत बड़ा कलाकार माना जाता है। उनके सौंदर्य कारक खास वादन वैशिष्ट इस प्रकार कहे जा सकते हैं। पृष्ठ संख्या 284। पहला, दायां एवं बायां। दोनों वादियों में से वे एक अलग ही नाद सौंदर्य निर्माण करते हैं। यह नाद सौंदर्य उस्ताद अल्लाह रखा के वादन के नाद सौंदर्य से भी अलग है। दूसरा, अड़चन निर्माण किए बिना श्रोताओं को पसंद आने वाली तथा प्रभावित करने वाली लय की सूक्ष्म क्रीड़ा सोलो वादन एवं सात संगत में से पेश करने की अनोखी शैली उन्होंने निर्माण की। यह शैली वादक के लिए कठिन किंतु श्रोता को आनंद देने वाली है। उनके वादन में बुद्धिमानों के लिए भी विचारों का पर्याप्त खाद्य विद्यमान होता है। तीसरा, सात संगत में पूर्व रचित बिठाई गई रचनाओं का उपयोग करना गौण माना जाता है। मुख्य कलाकार के प्रस्तुतिकरण को अत्यंत पोषक, अनुगामी एवं समांतर सात संगत करना श्रेष्ठ कला मानी जाती है। फलतः संगीतानुभव चैतन्यमय और ताजा प्रतीत होता है। इस प्रकार की उत्स्फूर्त सात संगत प्रयोगशीलता एवं नवनिर्मिति क्षमता से ही संभव हो सकती है। इस शक्ति को प्रतिभा शक्ति कहना उचित होगा। इस प्रकार का वादन करने वाले कलाकारों की इन गुणों की कसौटी पर उस्ताद जाकिर हुसैन अग्रसर कलाकार माने जाते हैं। कलाकार की असामान्यता की प्रतीति उसी में से हुआ करती है। चौथा, नवनिर्मिति कलात्मक होने के लिए जिस प्रकार प्रतिभा की जरूरत होती है, उसी प्रकार चिंतनशीलता की भी आवश्यकता होती है। प्रचलित ज्ञान रचनाओं का आलेख, आकृति बंध, उसमें प्रयुक्त भाषा प्रयोग, उसके शब्दों का ध्वनि माधुर्य, शब्द संगति, आशय संपन्नता, उसमें अंतर्भूत लय, गणित, शब्दों का निकास आदि सबका अगर ठीक अध्ययन करके उस पर चिंतन करें और उस चिंतन को प्रतिभा का जोड़ मिले तो रचना सुंदर बनती है। ऐसे नवनिर्मित सौंदर्य को घड़न, आशय और या निकास में निर्माण करने की क्षमता प्रतिभावान महान कलाकार में हुआ करती है। पांचवा, महान संत समर्थ रामदास के श्री राम जय राम जय जय राम मंत्र का 13 करोड़ बार उच्चारण करने पर साक्षात प्रभु रामचंद्र उनके सामने अवतरित हुए। उसी तरह कठोर परिश्रम से तबले के अक्षर, शब्द प्रयोग तथा पलटे घंटों बजाने से सरस्वती माता भी प्रसन्न होती हैं और रियाज की हुई रचनाएं सौंदर्यपूर्ण रूप में प्रस्तुत होती हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन के मनमोहक एवं कलापूर्ण वादन के मूल में उनका प्रदीर्घ काल का सख्त रियाज निहित है। पृष्ठ संख्या 285। कठोर परिश्रम के लिए पर्याय न हो तो भी यह मान्य करना चाहिए कि कुछ कलाकारों को नैसर्गिक गुणवत्ता प्राप्त हुई होती है। उदाहरण, गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर की आवाज एवं उनका संपूर्ण गायन। उस्ताद जाकिर हुसैन को भी नैसर्गिक गुणवत्ता का लाभ हुआ है, किंतु केवल नैसर्गिक गुणवत्ता मनुष्य को बड़ा नहीं बनाती। एक बार ऐसी गुणवत्ता न भी हो, किंतु प्रदीर्घ कलात्मक सातत्यपूर्ण मेहनत एवं मार्गदर्शन हो, तो भी कलाकार बड़ा हो सकता है। कलाकार को बड़ा एवं यशस्वी बनाने के लिए जिद्दी होना भी आवश्यक है। उसी प्रकार उसे अत्यंत उत्साही वृत्ति का भी होना चाहिए। कलाकार को चिमड़पन के साथ प्रयत्नशील होना चाहिए, साथ ही उसे स्वप्न देखने वाला भी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कलाकार में अगर कला के प्रति प्रतिबद्धता हो तो सोने में सुहागा। उपर्युक्त विवेचन से हमारे ध्यान में यह बात आ जाएगी कि श्रेष्ठ और यशस्वी कलाकार होने के लिए जो विविध कारण होते हैं उनके दो विभाग हो जाते हैं। एक वे जो कलाकार के अधीन या अख्तियारी में होते हैं, और दूसरे वे जो कलाकार की पहुंच के बाहर होते हैं। ऐसे सब कारणों का अगर हम यश चक्र आंक सकें तो इस संपूर्ण लेख का सार दृश्य रूप में सहजतया आकलन कर सकेंगे। वह रूपरेखा इस प्रकार होगी। कलाकार का यश चक्र, कला के प्रति प्रतिबद्धता, रियाज एवं मेहनत, प्रयोगशीलता, चिंतनशीलता, सौंदर्य वृत्ति, गुरु का मार्गदर्शन, व्यसन मुक्तता, प्राप्त मौके का लाभ, नवनिर्मिति क्षमता, स्वप्नशीलता, जिद उत्साह एवं चिमड़पन, व्यक्तित्व, नैसर्गिक गुणवत्ता, आत्म परीक्षण एवं तदनुसार बदलने की क्षमता, लक्ष्य निश्चिति एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए जागरूक एवं प्रयत्नशीलता, ज्ञान प्राप्ति, घर का प्रसन्न वातावरण, घर का कला का वातावरण, कला प्रदर्शन के लिए उचित मौके एवं गुंजाहस, उत्तेजक दाद, अनुकूल वातावरण, योग्य संगीत प्रकार का चुनाव, रसिक ध्येयवादी, मार्गदर्शन पालक एवं भाग्य आदि।